أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عشرہ مجالس زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی آج اس 10ویں مجلس میں فدق کے بارے میں بات کریں گے. اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو مرحلہ با مرحلہ جد و جہد انجام دی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. آیت اللہ ابراہیم امینی نے یہ لکھا کہ فدق مدینے سے 2 دن کی مسافت پر واقع ہے اور اس میں کئی باغات تھے. یہ علاقہ قدیم زمانے میں آباد خوشحال تھا اور یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. جب انہوں نے جنگ خیبر میں اسلام کی طاقت کا مشاہدہ کیا تو نبی کو صلح کی پیشکش کی. نبی نے صلح قبول کی اور یہ علاقہ بغیر جنگ کے مسلمانوں نے فتح کیا. اسلام کے قانون کی روح سے جو علاقہ بھی بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ رسول کا ہے، اور یہ اسلام کے قوانین میں سے ایک ہے. سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی محنت نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ سے اپنے رسول کو دلوایا ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر کوئی مال یا جائیداد بغیر جنگ کے صلح کی بنیاد پر حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے مال رسول ہے، اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور کفار کے قبضے سے حاصل ہونے والے علاقوں کی قرآن نے 2 الگ الگ قسمیں قرار دی ہیں، ایک وہ جس کو مسلمانوں نے جہاد کر کے فتح کیا، اور دوسرا وہ جو بغیر جنگ کے کفار نے بطور صلحہ خود پیغمبر اسلام کو پیش کیا. مختصر یہ کہ فدق کی اراضی نبی کے اختیار و ملکیت میں آ گئی، اور آپ اس کی آمدنی کو بنی ہاشم اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وآتی فالقربا حقہ والمسکین وابن السبیل، یعنی اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو. اس آیت کے نزول کے بعد نبی نے حکم الہی کے مطابق فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبا کر دیا، عنایت کر دیا. اور اس بارے میں نبی سے بکثرت روایات موجود ہیں. مثلا اہل سنت کے عالم ہیں ابو سعید خدری لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فدق تمہارا ہے. نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا ذوالقربیٰ کون ہیں، اقربا کون ہے اور ان کا حق کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا خدا فرماتا ہے فاطمہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کا حق ہے، فدق ان کے حوالے کر دیں. فدق معمولی کم قیمت نہ تھا بلکہ بہت قیمتی املاک تھی. بتایا گیا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 24,000 یا 70,000 دینار تھی، جس کا ہر دینار 1 مثقال سونے کے برابر تھا. فدق حضرت زہرا کی ملکیت میں آ گیا، اس کی آمدنی غریب محتاج مومنین میں تقسیم کر دی جاتی تھی. فدق کے علاوہ عوالی نامی جائیداد جس میں 7 باغات تھے اس کو بھی حضرت زہرا کی ملکیت قرار دے دیا گیا، ये जायदादें नबी की ज़िंदगी में और उनकी वफ़ात के बाद का कुछ अरसा हज़रत ज़हरा के तसर्रुफ़ में रहीं। इसकी आमदनी को अपने आमिलों के ज़रिए वसूल करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाता था। ये बात शिया और सुन्नी उलमा के अकवाल के मुताबिक है कि नबी ने फ़िदक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दे दिया था। अल्लामा सुयूती ने अपनी तफसीर में हवालों के साथ बयान किया है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी ने फ़िदक फ़ातिमा अलैहि सलाम को मुस्तकिल तौर पर दे दिया और ता हयात नबी फ़िदक फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तसर्रुफ़ में रहा। वो हस्तियां जिनके पास सालाना आमदनी तकरीबन 70,000 मिसकाल सोने के बराबर या इससे ज़्यादा आती थी, इतनी जायदाद के बावजूद उन्होंने खुदा की खातिर सादा और सख्त ज़िंदगी गुजारी है। अहले सुन्नत के आलिम हैं अल्लामा इब्ने अबिल हदीद और इब्ने हजर, और इनके अलावा दूसरे लोगों ने जो तहरीर किया उससे ये हकीकत वाज़े है कि हज़रत फ़ातिमा ने फ़िदक अपनी मिल्कियत में लेने के बाद उस पर अपने कारिंदे मुकर्रर फरमाए। उसका काम और उसकी आमदनी का तसर्रुफ़ हज़रत ज़हरा के हाथ में था। और बिलाज़री जो कि बड़े उलमाए अहले सुन्नत से हैं और अल्लामा शिबली ने नकल किया है, उसकी इबारत है कि फ़िदक ख़ास रसूल का था क्योंकि उस पर मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए ना ऊँट। और अल्लामा सुयूती और अल्लामा शिबली की कुतुब से ये बात बयां होती है कि फ़िदक को हज़रात शेखैन ने अपने अपने अहद में अपने लिए मखसूस कर लिया था। और इसके बाद तीसरे खलीफा का ज़माना आया। तारीख़ अबुल फ़िदा से तारीख़ अहमदी ने नकल किया है कि जिन बातों ने लोगों को तीसरे खलीफा पर मुश्तैल किया था उनमें से एक ये भी थी कि उन्होंने अफ्रीका के माले गनीमत का खुम्स जो कि आले रसूल का हक था मरवान इब्ने हकम को अता कर दिया था। इसके अलावा फिदक भी मरवान इब्ने हकम को बतौर जागीर उन्होंने दे दिया था। गर्ज़ ये कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फिदक छीन लेने के बाद ये हर अहद के खलीफा के लिए मखसूस रहा। मरवान के बाद ये जायदाद मरवान की औलाद में मुंतकिल होती रही यहाँ तक कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ तक पहुँची। इस खलीफा ने अहले बैत के बारे में जो सख्तियाँ होती चली आ रही थी उनको किसी हद तक दूर करना चाहा, तो इसने इस सिलसिले में कुछ काम किए जिनमें एक ये भी है कि इस खलीफा ने अपने अहद खिलाफत में पहली बार फिदक को औलाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को वापस किया, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के बाद फिदक फिर औलाद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से ले लिया गया। यहाँ तक कि सफा का ज़माना आया, उसने फिर औलाद फ़ातिमा को फिदक वापस किया और उसके बाद फिर ये फिदक वापस ले लिया गया। जब खलीफा मेहदी अब्बासी का ज़माना आया तो उसने एक बार फिर ये हुआ कि औलाद फ़ातिमा को फिदक वापस किया, मेहदी के बाद फिर फिदक वापस ले लिया गया। जब मामून रशीद का ज़माना आया तो उसने उलमा को जमा किया और फिदक के मसले पर अपने सामने बहस कराई और आखिर में ये तय हुआ कि ये हक़ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। उसके बाद औलाद फ़ातिमा को फिदक वापस कर दिया। अल्लामा जाफ़र शहीदी की किताब है बाग़ फिदक, उन्होंने इसमें ये बयान किया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात भी बयान की हैं इस हवाले से। सवाल यह है कि फिदक को छीना क्यों गया था, इस बारे में आयतुल्लाह दस्ते गैब बयान करते हैं। वजूहात तो खैर मुख्तलिफ बयान की गई हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर एक रिवायत बयान करेंगे जो आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराज़ी ने बयान की है। वो कहते हैं कि रसूल की वफ़ात के बाद दूसरे खलीफा ने पहले खलीफा से कहा कि ये फिदक बड़ी जागीर है जो अली और फ़ातिमा के हाथ में है, जिसे ये मखलूक में तकसीम करके उनके दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं और ये चीज़ हमारी खिलाफत की बुनियादों को ना सिर्फ हिला सकती है बल्कि मिटा भी सकती है, लिहाजा जिस तरह भी हो ये उनके हाथों से ले लिया जाए। इसके बाद दोनों ने कुछ लोगों को भेजा और हज़रत ज़हरा के कारिंदों को फिदक से बाहर निकाल कर ख़ुद उस पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह मुसलमानों ने खुदा और रसूल की तरफ से दी हुई जायदाद बिनते रसूल से छीन ली। हज़रत आशा ने नकल किया है कि हज़रत फ़ातिमा ने एक शख्स को खलीफा के पास भेजा और अपने वालिद की मीरास का मुतालबा किया। हज़रत ज़हरा ने उस वक्त चंद चीज़ों का मुतालबा किया था। नंबर एक, पैगंबर के वो अम्वाल जो मदीने में मौजूद थे। नंबर दो, फिदक। और नंबर तीन, खैबर का बाकी बचा हुआ खुम्स। आगे हज़रत आयशा बयान करती हैं, ख़लीफ़ा ने हज़रत फ़ातिमा को जवाब दिया कि पैगंबर ने फरमाया है हम मीरास नहीं छोड़ते, और हज़रत फ़ातिमा को कोई चीज़ देने पे तैयार नहीं हुए, इसीलिए हज़रत फ़ातिमा उन पर ग़ज़बनाक हुई और वफ़ात तक उनसे कलाम नहीं किया। यानी फिदक के अलावा खैबर के तमाम मौजूद गनाइम पर भी कब्ज़ा कर लिया था, यहाँ तक कि वो खुम्स जो खुदा और उसके रसूल और बनी हाशिम के अकरबा यतीमों मिस्कीन और इब्ने सबील का हिस्सा था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया था, और हज़रत ज़हरा और बनी हाशिम को अकरबा के हिस्से से महरूम कर दिया था। ये विरासत नहीं था जिसके बारे में ये कह दिया जाता कि पैगंबर विरासत नहीं छोड़ते। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा पहले खलीफा के पास गई और फरमाया कि तुम खुद जानते हो कि तुमने हम अहले बैत के साथ ज़्यादती की है, हमें रसूल अल्लाह के सदक़ात और उनके हिस्से से जिसे कुरान ने अकरबा के लिए मुय्यन किया है महरूम कर दिया है, खुम्स का ये हिस्सा तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए है क्या? और अल्लामा इब्ने अबिल हदीद ने शरह नहजुल बलागा में लिखा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िदक के मुतालबे के लिए पहले खलीफ़ा के पास आई तो उन्होंने कहा, पहले खलीफ़ा ने कहा कि फ़िदक रसूल अल्लाह का माल नहीं था बल्कि मुसलमानों का माल था, मुसलमानों के माल में से था जिसके ज़रिए पैगंबर मुजाहिदीन को जंग पर भेजते और उसकी आमदनी को राह खुदा में खर्च करते थे। अब फ़िदक छीन लिए जाने के बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने दो रास्ते थे, एक ये कि खामोश रहें अपने हक़ से चशमपोशी कर लें, दूसरा रास्ता ये था कि अपनी पूरी कुदरत से हक़ का दिफा करें। शहज़ादी जानती थी कि हुकूमत का मंसूबा क्या है, शहज़ादी को माल दुनिया की ज़रूरत नहीं थी लेकिन हक़ का इजहार भी वाजिब है ताकि जहाँ तक हो सके जुल्म से महफूज रहा जाए, कोशिश करनी चाहिए कि हकदार को उसका हक़ पहुँच जाए। अगर हज़रत ज़हरा दबाव में आकर अपने हक़ का दिफा ना करें तो हुकूमत को आदत पड़ जाएगी जुल्म सितम करने की, और फिर वो दूसरे लोगों के हकूक़ का लिहाज भी नहीं रखेंगे और लोग सोचेंगे कि अपने हक़ से सरफ़ नज़र करना, जुल्म सितम के ज़ेर बार होना अच्छी बात है। अगर दुख्तरे पैगंबर ने अपने हक़ से सरफ़ नज़र कर लिया तो मुसलमान ख्याल करेंगे कि औरत के कोई इज्तिमाई हकूक़ नहीं हैं और औरत को हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपने हक़ के लिए जंग करे। शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि दामन वही की तरबियत याफ़्ता थी, जो काशाना विलायत में ज़िंदगी गुजार रही थी, जो ख़वातीन के लिए नमूना अमल थी, कैसे अपने हक़ का दिफा ना करती? दूसरे ये कि ये माल मुस्तहकीन में तकसीम होना चाहिए था, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए था जो ज़ाती ख्वाहिशात पर खर्च करें। दूसरे अहम बात ये कि हक़ इजहार का ये मतलब भी होता है कि बातिल का असल चेहरा सामने आ जाए, जैसा कि आ गया। शहज़ादी ने अपने हक़ दिफा करने का अज़म किया मगर ये आसान ना था, वो भी एक खातून के लिए खिलाफत से मुकाबला करना, और खिलाफत भी वो जिसने पहले ही जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पहलू शिकस्ता कर दिया था। लेकिन शहज़ादी जिन्होंने शुजाअत इस्तकामत अपने बाबा और अपने मादरी गिरामी से विरासत में पाई, जो इस्लामी जिहाद के मरकज़ में परवान चढ़ी, ताकतवर तरीन फिदाकार तरीन अफराद के घर में ज़िंदगी बसर की, बारहा अपने शौहर के खून आलूद लिबास को धोया, ज़ख्मों पर मरहम रखा, इन हवादिस से हिरासा नहीं हुई और अपनी जद्दोजहद को चंद मराहिल में अंजाम दिया। अल्लामा जाफ़र शहीदी ने किताब बाग़ फ़िदक में उलमाए अहले सुन्नत की मौतबिर किताबों से रिवायात नकल की हैं। अहले सुन्नत की किताबों में फ़िदक का वाक़या तफसील से बयान किया गया है। इन उलमा में अबू बकर जौहरी, याकूत, हमवी, शाफ़ई, इब्ने हजर, अल्लामा इब्ने अबिल हदीद की कुतुब से ये जाहिर है कि हज़रत फ़ातिमा ने इस सबूत में कि फ़िदक मेरे बाबा ने मुझे हिबा किया था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब उम्मे ऐमन को बतौर गवाह पेश किया। खलीफा ने जवाब दिया कि शौहर की गवाही जौजा के हक़ में नहीं सुनी जा सकती, हो सकता है कि ये उनके अपने मफाद के लिए हो, और उम्मे ऐमन एक औरत की गवाही लायक एतबार नहीं, और इस तरह उन्होंने फ़िदक बैतुल माल में दाखिल कर लिया। जनाब अब्बास क़ुम्मी बैतुल आज़ान में लिखते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ने उम्मे ऐमन को बतौर गवाह पेश किया तो गवाही देने से पहले उम्मे ऐमन ने खलीफा से कहा, मैं गवाही देने से पहले तुमसे एक बात की तस्दीक कराना ज़रूरी समझती हूँ, तुम्हें खुदा की कसम, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूल ने फरमाया था उम्मे ऐमन जन्नती खातून है? खलीफा ने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ, रसूल अल्लाह ने ये कलमात फरमाए थे। उसके बाद जनाब उम्मे ऐमन ने गवाही दी, उसके बाद मौलाए कायनात ने भी गवाही दी। خلیفہ نے ایک حدیث بیان کی جس کے راوی وہ خود ہی تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ رسول نے فرمایا تھا، ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے اور اسے ہمارے جانشین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو اسے غریبوں غریب مسلمانوں میں تقسیم کریں، بس اسی لحاظ سے فدق ہمارے پاس رہے گا۔ ام ایمن، جن کے لیے نبی نے فرمایا تھا جنتی خاتون ہیں، ان کی گواہی کو بھی رد کر دیا، اور مولائے کائنات جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور حق وہیں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ آیائے مباہلہ، آیائے تطہیر، حدیث ثقلین سب کے سب بیوی کی طہارت، عظمت، صداقت کی گواہ ہیں۔ ایک دن مولائے کائنات خلیفہ کے پاس مسجد میں گئے، آپ نے وہاں مہاجرین اور انصار کو بڑی تعداد میں پایا۔ آپ نے خلیفہ سے کہا کہ فرمایا کہ تم نے فاطمہ کو ان کے والد کی میراث سے محروم کیوں کیا؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ فدق تمام مسلمانوں کا مال ہے، اگر فاطمہ گواہ پیش کریں جو یہ گواہی دیں کہ رسول اللہ نے یہ جاگیر ان کو ہبا کی تھی، فدق ان کو ہبا کیا تھا، تو ان کو واپس کر دی جائے گی۔ مولا نے فرمایا کہ تم ہمارے متعلق اس قانون کے تحت فیصلہ نہیں کر رہے ہو جو اللہ نے مسلمانوں کے متعلق مقرر کیا ہے۔ تو خلیفہ کہنے لگے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، ایک چیز کسی مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہو اور بالفرض میں اس کے متعلق یہ دعویٰ کروں کہ یہ چیز میری ہے، اب تم کس سے گواہ طلب کرو گے؟ خلیفہ نے کہا کہ میں آپ سے ہی گواہ طلب کروں گا کیونکہ دعویٰ آپ نے ہی کیا ہے۔ تو مولائے کائنات نے فرمایا، تو پھر تم فاطمہ سے فدق کی ملکیت کے گواہ کیوں طلب کر رہے ہو جبکہ فدق تو پہلے سے ہی فاطمہ کے تصرف میں تھا؟ اور اگر بالفرض یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے تو تم تمام مسلمانوں سے ان کے دعوے کے لیے گواہ طلب کرو، فاطمہ سے تمہارا گواہ طلب کرنا سرے سے ہے ہی غلط۔ یہ سن کر پہلے خلیفہ تو خاموش ہو گئے، لیکن دوسرے نے کہا کہ یا علی، آپ یہ باتیں رہنے دیں، ہم دلائل میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ عادل گواہ پیش کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ فدق تمام مسلمانوں کا مال ہے، فاطمہ اور آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ مولائے کائنات نے دوبارہ پہلے خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ مولائے کائنات نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، آیۂ تطہیر کس کے حق میں نازل ہوئی؟ خلیفہ نے کہا، آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا، فرض کرو اگر چند گواہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط گواہی دیں، تم فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا، میں ان پر بھی، یعنی فاطمہ پر بھی، ویسے ہی حد شرعی جاری کروں گا جیسا کہ دوسری عورتوں پہ جاری کرتا ہوں۔ مولائے کائنات نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر قرار پاؤ گے۔ خلیفہ کہتے ہیں، وہ کیسے؟ مولائے کائنات نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی پاکیزگی کی گواہی قرآن پاک میں دے دی ہے، لہٰذا اگر تم نے خدا کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ فاطمہ کو غلط سمجھا تو تم نے گویا اللہ کے فرمان کو رد کر دیا، اور اب بھی تم نے صاحب تطہیر فاطمہ کے مقابلے میں اوس ابن حدثان جیسے بدو کی گواہی کو ترجیح دی۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے تو تم نے اس کی گواہی قبول کر لی، اور فاطمہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے تم نے ان کے دعوے کو ٹھکرا دیا۔ مولائے کائنات کے اس استدلال نے حاضرین کو متاثر کیا، وہاں جو مہاجرین تھے، انصار تھے، جو افراد وہاں موجود تھے، وہ متاثر ہوئے اور لوگ ایک دوسرے کو ناراض نگاہوں سے دیکھنے لگے اور ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ خدا کی قسم علی سچ کہہ رہے ہیں۔ کتاب زندگانی حضرت فاطمہ میں آیت اللہ دست غیب نے لکھا کہ شہزادی نے خطبے میں اشارہ فرمایا کہ اولاً تو فدق میرے اختیار میں تھا، میری ملکیت تھا، بالفرض محال یہ مال مال پیغمبر بھی ہو تب بھی اس کی وارث تو میں ہوں، کیا تم اپنے باپ کی وراثت کے مالک ہو سکتے اور میں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم کہو کہ حدیث پیغمبر اس طرح ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کری کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے، ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، تو شہزادی فرما رہی ہیں कि अगर तुम कहो कि हदीसे पैगंबर इस तरह है तो तुम रसूल पर झूठ बांध रहे हो, क्योंकि रसूल का कोई फरमान कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। हज़रत फ़ातिमा ने एहतजाज किया। जब फिदक के बारे में हिबा को नहीं माना गया तो आपको यही कहना था कि हिबा करना नहीं मानते हो, मगर मैं अपने बाप की वारिस तो हूँ, यानी उनकी मौजूदगी में तुम्हारे नज़दीक वारिस नहीं, मालिक नहीं थी, उनके बाद वारिस होकर मालिक तो हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, मुझे मेरे बाप की विरासत क्यों नहीं देते? खलीफा ने कहा कि पैगंबर विरासत नहीं छोड़ते। हज़रत ज़हरा ने फरमाया, क्या खुदा ने कुरान में नहीं फरमाया? सूरह नमल। और सुलेमान दाऊद के वारिस बने। खलीफा गज़बनाक हुए और कहा, मैंने कहा ना पैगंबर मीरास नहीं छोड़ते। शहज़ादी ने फरमाया, क्या हज़रत ज़करिया ने खुदा से अर्ज़ नहीं की कुरान में सूरह मरियम, मुझे ऐसा फ़र्जंद दें जो मेरा वारिस और आले याकूब का वारिस हो? शहज़ादी ने मज़ीद फरमाया कि खुदा ने फरमाया सूरह निसा में, अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक़ में तुम्हें वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। और इसी सूरह में परवरदिगार आलम ने फरमाया, और वालदैन और कराबतदार जो शख्स तरका छोड़ जाए, हमने हर एक का वारिस मुकर्रर कर दिया है। क्या मैं रसूल की औलाद नहीं हूँ? और तुम जो विरासत की हदीस बता रहे हो, क्या तुम्हारे अलावा किसी और ने यह हदीस सुनी है? अगर तुम ऐसे अफराद ले आओ जो कहें सुनी है, तब भी झूठ होगा, इसलिए कि ये बात कुरान के ख़िलाफ़ है। इस मरहले में भी शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ग़ालिब आई, अपनी हक्कानियत साबित की और लोगों पर वाज़े कर दिया कि तुमने जिस खलीफा का इंतखाब किया है वो इस्लाम कुरान के कवानीन के मुताबिक अमल करने पे तैयार नहीं। दो मशहूर मौर्रिख तबरी और सकफ़ी अपनी तारीख में लिखते हैं कि तीसरे खलीफ़ा के अहद में हज़रत आयशा उनके पास आईं, तीसरे खलीफ़ा के पास आईं और उनसे कहा कि मेरे वालिद और उनके बाद दूसरे खलीफ़ा मुझे मखसूस वजीफ़ा देते थे, लिहाजा तुम भी मुझे वो वजीफ़ा दो। तो जवाब में तीसरे खलीफ़ा ने कहा कि अगर वो दोनों अपनी ख्वाहिश के तहत, ख्वाहिशात के तहत आपको कुछ देते थे, तो मुझे किताब व सुन्नत में ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जिसके तहत मैं आपका मखसूस वजीफ़ा जारी रखूं। हज़रत आयशा ने कहा कि अच्छा, रसूल अल्लाह से मेरी जो मीरास बनती है मुझे वही दे दो। तीसरे खलीफ़ा ने कहा कि क्या आप ये बात भूल गई हैं जब फ़ातिमा आपके वालिद के पास आई थी और उन्होंने रसूल अल्लाह की मीरास का मुतालबा किया था, उस वक्त आपने गवाही दी थी कि पैगंबर की मीरास नहीं होती और मालिक इब्ने औस ने गवाही दी थी कि पैगंबर की मीरास नहीं होती, आपने इस गवाही से फ़ातिमा की मीरास बातिल कर दी थी और अब मेरे पास आकर मुझसे मीरास तलब कर रही हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तबरी मज़ीद लिखते हैं कि उस वक्त खलीफा तकिए का सहारा लिए हुए थे, जब उन्होंने हज़रत आयशा की बात सुनी तो सीधे होकर बैठ गए थे। मुख्तलिफ़ रिवायतों में मुख्तलिफ़ गवाहों के नाम बयान किए गए कि जिन्होंने ये गवाही दी थी कि नबी ने फरमाया कि अम्बिया मीरास नहीं छोड़ते, उनका तरका सदका होता है, और ये जो मनगढ़ंत हदीस है ये कुरान के ख़िलाफ़ है। जैसा कि शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान से इस्तदलाल पेश कर दिया, कुरानी आयात उन्होंने बयान फरमाई। अगले मरहले में हज़रत ज़हरा ने मस्जिद जाकर ख़िताब करने का इरादा किया और ये ख़बर मदीने में फैल गई कि यादगार नबी तकरीर करना चाहती हैं। मस्जिद में महाजर अनसार का हुजूम हो गया। हज़रत ज़हरा घर से बाहर तशरीफ़ लाईं, बनी हाशिम की औरतों ने शहज़ादी को अपने घेरे में ले लिया। शहज़ादी बहुत हैबत और जलाल के साथ आगे बढ़ी, पैगंबर की तरह कदम उठा रही थी। जब मस्जिद में दाखिल हुई तो आपके सामने पर्दा लगा दिया गया। बाप की जुदाई और नागवार हवादिस ने आप पर ऐसा असर किया कि आपके जिगर से आहू नाला बुलंद हुआ, जिसे सुनकर लोगों की सदाए गिरिया बुलंद हो गई। शहज़ादी कुछ देर खामोश रही ताकि लोग खामोश हो जाएं। उसके बाद आपने वो बेमिसाल खुतबा इरशाद फरमाया जिसे खुतबाए फिदक कहा जाता है। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं कि मैंने उस्ताद अली इब्ने फ़ारूक़ी से कहा कि क्या हज़रत फ़ातिमा अपने दावे में सच्ची थीं या नहीं थीं? तो उस्ताद अली इब्ने फ़ारूक़ी ने कहा कि हाँ, वो सच्ची थीं। तो अल्लामा इब्ने अबिल हदीद कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर खलीफ़ा हज़रत ज़हरा को सच्चा जानते थे तो उसके बावजूद हज़रत ज़हरा को फितक वापस क्यों नहीं किया? तो उस्ताद अली इब्ने फ़ारूक़ी मुस्कुराए और कहा कि अगर खलीफ़ा उस दिन फ़ातिमा को फितक वापस कर देते तो दूसरे दिन वो वापस आती और अपने शौहर की खिलाफत का मुतालबा कर देती और खलीफ़ा को खिलाफत के मकाम से माजूल करार दे देती, और क्योंकि पहले सच्ची मान ली गई थी तो अब खलीफ़ा के लिए कोई उज़्र पेश करना मुमकिन ना रहता। किताब दलाइलुल इमामा की रिवायत है कि पहले खलीफ़ा ने दूसरे खलीफ़ा से कहा कि तुमने मुझे क्यों फिदक फातिमा को ना देने की मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, और इसकी वजह क्या है, ये बात वो क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी बताई गई है। उन्होंने आगे ये कहा कि लोगों के भड़के हुए जज्बात का क्या करें। तो दूसरे खलीफ़ा ने उन्हें ये जवाब दिया कि ये जो जज्बात हैं लोगों के भड़के हुए, ये वक्ती और आर्जी हैं, ज़्यादा अरसे नहीं रहेंगे। तुम नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो और अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करो, मुसलमानों के बैतुल माल में इजाफ़ा करो, सिलाए रहमी करो ताकि खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दूसरे खलीफ़ा पहले खलीफ़ा को बता रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि क्योंकि खुदा ने कुरान में फरमाया है कि नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। तो पहले खलीफ़ा ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और कहा, आफरीन, तुमने मेरी कैसी मुश्किल को हल कर दिया। उसके बाद उन्होंने लोगों को मस्जिद बुलाया और ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जब ये गुफ्तगू जनाब उम्मे सलमा ने सुनी तो उन्होंने शहज़ादी कौनैन का दिफा किया और फरमाया कि ये गुफ्तगू उन खातून के मुतालिक कर रहे हो जिन्हें फ़ातिमा कहते हैं, जो कि इंसानों की शक्ल में हूर हैं, जिन्होंने पैगंबर के दामन में परवरिश पाई है। क्या तुम गुमान करते हो कि पैगंबर ने फ़ातिमा को विरासत से महरूम किया हो और ख़ुद उन्हें ना बताया हो। अलमुख्तसरी की जनाब उम्मे सलमा ने जब शहज़ादी फ़ातिमा की हिमायत की तो उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा का वजीफ़ा 1 साल तक के लिए बंद कर दिया गया। जबकि कुनफुज को एक तंगी के ज़माने में, जब लोगों को पूरा वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा था, कुनफुज को उस वक़्त भी पूरा वजीफ़ा दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था? उस ताज़ियाने की कदरदानी के सिले में जो उसने शहज़ादी कौनैन को लगाया था। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद ने तहरीर किया कि उन्होंने पहले खलीफ़ा की गुफ्तगू के बारे में अबू याया से सवाल पूछा कि ये किससे मुतालिक थी। जैसा कि अभी हमने कहा कि खलीफ़ा ने लोगों को मस्जिद में बुलाया और ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की जिस पे जनाब उम्मे सलमा ने दिफा किया है, उसी गुफ्तगू में के बारे में अल्लामा इब्ने अबिल हदीद जो हैं वो अबू याया से सवाल कर रहे हैं। उस गुफ्तगू में कुछ हिस्सा शहज़ादी से मुतालिक था, कुछ मौलाए कायनात से। तो जो मौलाए कायनात के बारे में था उसके बारे में अल्लामा इब्ने अबिल हदीद दरियाफ़त कर रहे हैं कि ये गुफ्तगू किससे मुतालिक है। तो अबू याहिया ने जवाब दिया कि ये सब कुछ हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा गया। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद ने कहा कि ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू हज़रत अली के मुतालिक की जा सकती है? तो उन्हें जवाब दिया गया कि बेटा, ये हुकूमत है, इसमें ये सब कुछ होता है, इसमें अपने और बेगाने को नहीं देखा जाता। ये अबू याहिया ने जवाब दिया। हुकूमत तो मौलाए कायनात ने भी की थी। जब जंगे सिफ़ीन में माविया अपने लोगों को हुक्म दे रहा था कि वो सुब्ब शितम करें और अहले इराक़ ने जब ये सुना तो उन्होंने माविया को गालियाँ दीं। मौलाए कायनात ने अपने लश्कर वालों को इससे मना किया और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए नापसंद करता हूँ कि तुम गाली देने वाली कौम बन जाओ। बुरा कहने के बजाय ये कहो, या अल्लाह, हमारा और उनका खून बहने से बचा ले, हमारे और उनके दरमियान सुलह करा दे, उनको गुमराही से निकाल कर हिदायत दे दे ताकि जहालत के मुकाबले में हक़ को पहचान लिया जाए। ये मौलाए कायनात की सीरत है। हज़रत शहज़ादी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा और अब शहज़ादी ने ये किया कि खलीफ़ा से गुफ्तगू बंद कर दी। जहाँ कहीं भी उनका सामना होता रुखे पाक फेर लेती। हज़रत ज़हरा कोई आम फ़र्द नहीं थी कि जो उनका बातचीत बंद कर देना कोई अहमियत ना रखता हो। रसूल की अज़ीज़ तरीन दुख्तर थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात लोगों में फैल गई कि नबी की दुख्तर नाराज़ हैं। मदीने के बाहर भी लोग इस मसले से आगाह हो गए। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी लिखते हैं कि लोग एक दूसरे से सवाल करते कि हज़रत फ़ातिमा खलीफ़ा से बात क्यों नहीं करती हैं। लाजमन इसकी वजह फिदक का गसब करना है। फ़ातिमा झूठ तो नहीं बोलती और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी पर गज़बनाक भी नहीं होती। इस तरह मिल्लत इस्लामिया के एहसास में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था और ख़िलाफत के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही थी। लिहाजा उन दो अफराद को सुलह की कोशिश करना पड़ी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अहमद इब्न हम्बल, शेख अब्दुल हक देहलवी और इब्न कुतैबा, जो कि अजीम उलमाए अहले सुन्नत से हैं, उनका बयान है जिसका ख़ुलासा यह है कि इन दो अफराद ने तय किया कि हमें फ़ातिमा के घर चलना चाहिए क्योंकि हमने उनको गज़बनाक किया है। इन दोनों ने शहज़ादी के घर आने की इजाज़त चाही लेकिन शहज़ादी ने इजाज़त नहीं दी। फिर इन दोनों ने मौलाए कायनात को वसीला बनाया और इस ज़रिए से ये शहज़ादी के घर तक पहुँचे। शहज़ादी ने अपने रुख पाक इनकी तरफ से फेर लिया। इन दोनों ने सलाम किया, शहज़ादी ने जवाब नहीं दिया। और पहले खलीफ़ा ने वही गुफ्तगू दोहराई कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता और ये और वो, और यानी अभी तक वो अपनी बात पर डटे हुए थे, वही बात बयान कर रहे थे। शहज़ादी फ़ातिमा ने उनसे फ़रमाया कि अगर मैं तुमसे रसूल अल्लाह की हदीस बयान करूं, तुम हदीस को जानते हो तो बताओगे? कहने लगे कि ज़रूर बताएंगे। शहज़ादी फ़ातिमा ने फ़रमाया, तुम दोनों को खुदा की कसम देती हूँ, खुदा की कसम देती हूँ, क्या तुमने रसूल से ये नहीं सुना कि फ़ातिमा की खुशनूदी मेरी खुशनूदी है, फ़ातिमा की नाराज़गी मेरी नाराज़गी है? जिसने फ़ातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फ़ातिमा को खुश रखा उसने मुझे खुश रखा, जिसने फ़ातिमा को रंज देकर गज़बनाक किया उसने मुझे रंज देकर गज़बनाक किया। उन दोनों ने कहा कि हाँ, हमने ये रसूल अल्लाह से सुना है। तो शहज़ादी फ़ातिमा ने फ़रमाया, मैं अल्लाह और उसके फ़रिश्तों को गवाह करके कहती हूँ कि यकीनन तुम दोनों ने मुझको गज़बनाक किया, तुम लोगों ने मुझे नाखुश किया, और जब मैं नबी से मुलाकात करूँगी तो ज़रूर तुम्हारी शिकायत करूँगी। सही मुस्लिम जिल्द 2 में रिवायत है, हज़रत आयशा फरमा रही हैं उरवा इब्ने ज़ुबैर से कि जब फ़ातिमा ने मेरे वालिद से अपनी मीरास तलब की, उन्होंने फ़ातिमा को कुछ भी देने से इनकार किया, तो फ़ातिमा उनसे नाराज़ हुई और बिल्कुल किनाराकश हो गई। उन्होंने फिर कोई कलाम उनसे नहीं किया, यहाँ तक कि फ़ातिमा की वफ़ात हो गई। फ़ातिमा के शौहर ने शब में उनको दफन किया और जनाजे में खलीफा को शिरकत की इजाज़त नहीं दी। तकरीबन यही इबारत हज़रत आयशा से सही बुखारी में दर्ज है। अगर साहिब इख्तदार वाकई नादिम थे तो उन्होंने फितक हज़रत फ़ातिमा के हवाले क्यों नहीं किया? लेकिन वो लोग अगरचे के जनाब फ़ातिमा के दलाइल के सामने डटे रहे और फितक वापस नहीं किया, लेकिन हज़रत ज़हरा ने इस्लाम पर, आलम इस्लाम पर खिलाफत की ज़्यादतियों को और अपनी हक्कानियत को साबित कर दिया था। ये फितक खिलाफत के गले में फंसी हुई हड्डी की मानिंद हो गया था। ये मसला हुकूमतों के लिए ऐसा नुक्ता ज़ोफ़ रहा जिसके हल से हुकूमतें आजिज़ थीं। कभी हुक्मरान अलवियों की हिमायत हासिल करने के लिए फितक उनको दे देते थे और कभी उनसे नाराज़ होकर वापस ले लिया जाता था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अपने हदफ और मकसद में इस कदर इस्तकामत रखती थीं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी तक जद्दोजहद करती रहीं और अपने मुबारजे का दामन क़यामत तक फैला दिया। लाजमन ताज्जुब होगा कि कैसे मुमकिन है कि अपने मुबारजे को मौत के बाद भी बाकी रखें। वो इस तरह बाकी रखा कि हज़रत ज़हरा ने वसीयत की थी कि रात की तारीकी में दफन किया जाए, दुश्मनों को जनाजे पर, कब्र पर नहीं आने दिया जाए, और मौलाए कायनात ने ऐसा ही किया। इस तरह हज़रत ज़हरा हमेशा के लिए अपनी मज़लूमियत और ख़लीफ़ा की जब्बारी पर एक मज़बूत सनद छोड़ गईं, क्योंकि हर मुसलमान ये चाहेगा कि उसे इल्म हो पैगंबर की दुख्तर की कब्र कहाँ है, और जब उसे पता चलेगा उनकी कब्र नामालूम है और वो पूछेगा कि क्यों नामालूम है, और जब वो ये जवाब सुनेगा कि खुद हज़रत ज़हरा की वसीयत थी कब्र मख्फी रखी जाए, तो इस मौके पर वो शख्स खुद इस मसले की वजह समझ लेगा कि हज़रत ज़हरा खिलाफत से नाराज़ थी, और फिर सोचेगा कि क्या ये हो सकता है कि इस कदर फ़ज़ाइल और कमालात की मालिका दुख्तरे पैगंबर अपने वालिद के खलीफ़ा से नाराज़ हों और उसके बावजूद भी उनकी खिलाफत सही हो। ये मुमकिन नहीं, बस मालूम होता है खिलाफत गासिबाना और पैगंबर के नज़रिए के ख़िलाफ़ थी। आयतुल्ला बहजत ने फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रात की तारीकी में दफन होने की वसीयत के सबब हमेशा के लिए फातह करार पाई। शहज़ादी फ़ातिमा की फ़रियाद ये थी कि अली को खिलाफत से नहीं बल्कि खिलाफत को अली से महरूम कर दिया। उनकी दूरस निगाहें देख रही थीं कि इस इलाही मनसब को उसके अहल से महरूम कर देने के नतीजे क्या होंगे। मासूमा कौनैन ने अपने खुतबे में मदीने वालों को उन खतरात से आगाह कर दिया था कि तुमने अबल हसन को नज़रअंदाज करके दुनिया को एक बहुत हौलनाक ख़तरे से दोचार कर दिया है। इस ख़तरे का तुम्हें आज अंदाज़ा नहीं, लेकिन याद रखो जो गलती आज तुमने की है उसके नतीजे को कल ज़रूर सामने पाओगे, उसके नतीजे कल ज़रूर ज़ाहिर होकर रहेंगे। खुतबा फितक के अख्ताम पर बीवी ने फरमाया, खुदा की कसम तुम इसके बोझ को बहुत भारी और इसके अंजाम को हौलनाक पाओगे। जब तुम्हारे सामने से पर्दे हटा दिए जाएंगे और इसके पीछे छुपी हुई मुसीबत जाहिर हो जाएगी, और रोज़े क़यामत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए वो कुछ जाहिर होगा जिसका तुम्हें गुमान तक ना होगा। शहज़ादी फ़ातिमा ने एक खुतबा उस वक्त इरशाद फरमाया जब शहज़ादी बीमार हुई और महाजरीन और अंसार की औरतें आपकी आयादत के लिए आईं, और उन्होंने आपका अहवाल दरियाफ़्त किया, और बीवी ने जवाब में खुतबा इरशाद फरमाया उसके चंद जुमले, जिनका खुलासा कि शहज़ादी ने फरमाया, कसम बा खुदा अगर लोग राह रास्त से मुनहरिफ हो जाते और अल्लाह की वाज़े हुज्जत को कबूल करने से मुंह फेर लेते तो अबुल हसन उन्हें फिर से राह हक पर ले आते और उन्हें राह रास्त पर चला लेते और उन्हें तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत आसानी के साथ मंजिल तक ले जाते और उनको ऐसे खुशगवार चश्मों के किनारे पहुंचा देते जिसके किनारे छलकते हैं और वहां से सैराब करके वापस करते। खलवत जलवत में वसीयतें कर नसीहतें करते और बैतुल माल की दौलत से अपने लिए कोई इस्तफादा ना करते। वो सिर्फ इस फिक्र में रहते किसी प्यासे की प्यास बुझा दें, किसी भूखे का पेट भर दें और दुनिया को पता चल जाता कि जाहिद कौन है, लालची कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। शहजादी ने सूरह आराफ की आयत की तिलावत की, अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने उनके आमाल के सबब उन्हें गिरफ्त में ले लिया। यानी जनाब बतूल इस आयत को बयान करके इस बात की पेशेंगोई फरमा रही हैं कि अबुल हसन को खिलाफत से महरूम करने की वजह से उम्मत मुस्लिमा आइंदा हलाकत कुन फसादात से दोचार होगी। अगर तमाम उमूर हज़रत अली और उनकी औलाद के हाथ में होते तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देता, लेकिन जब इस इलाही मनसब को उसके अहल से दूर कर दिया जाए तो रोना उम्मत का नहीं बल्कि दुनिया का मुकद्दर बन जाता है। सबसे पहले शहज़ादी का घराना जुल्म व सितम का शिकार हुआ, उसके बाद से जुल्म का ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है। दुनिया ने देख लिया अब तक कौन सा जुल्म है जो इंसानों पर नहीं किया गया। आज दुनिया के हालात आप देख लें, बनी उमैया का ज़माना देख लें, बनी अब्बास का ज़माना देख लें। एक अब्बासी खलीफा के सिपाहियों ने उमवियों के सरों पर टूट पड़े सिपाही और उनके भेजे निकाल दिए। उसके बाद उमवियों की नीम जान लाशों के ऊपर कालीन बिछाए गए और रसूल अल्लाह के नाम पर खिलाफत पर काबिज़ होने वाला खलीफा जिसे खलीफतुर रसूल कहा जाता था वो और उसके करीबी लोग दस्तरखान लगाकर उन कालीनों पर खाना खाने में मशगूल हुए जिन कालीनों के नीचे इंसान पड़े हुए थे जख्मी हालत में। कालीन के नीचे से इंसानों के करहाने और आहो फरियाद की आवाज़ें आती रहीं। खलीफा खाना खाता रहा और खाने के बाद कहता है कि आज जो लज्जत खाने में थी वो ज़िंदगी भर किसी खाने में नहीं मिली। ये सिर्फ़ एक दास्तान है और ना जाने किस कदर दास्तान है जुल्म व सितम की जो तारीख जिनसे भरी हुई है। और जुल्म का ये सिलसिला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि फर्जंद जहरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़हूर नहीं हो जाता। सिर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है जो ज़मीन को अदल इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म जोर से भरी होगी। बस मोमिनात, बात को आज यहीं पे रोकेंगे। और कल हमारी बात यहाँ पे रुकी थी मसाइब के सिलसिले में कि मौलाए कायनात ने अपने हाथों से शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कब्र में उतारा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने शहज़ादी कौनैन की तमाम वसीयतों पर हर्फ ब हर्फ अमल किया। इमाम के दिल मुबारक पर क्या गुज़र रही थी इस हालत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरह इमाम ने जनाब जहरा को अपने हाथों से कब्र में उतारा होगा, उनके कब्र पे अपने हाथों से मिट्टी डाली होगी। फिर वो वक्त आया कि जब हज़रत जहरा की वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात को उनकी कब्र पे ठहरना था, जब मौलाए कायनात ने हज़रत जहरा के दफन से फारिग होने के बाद अपने हाथों से कब्र की मिट्टी झाड़ी तो आपके आंसू आपके रुखसारों पर बहने लगे। बहुत ज़्यादा गम व अंदोह आप पर तारी हो गया। मौला की कल्ब की कैफियत का थोड़ा सा अंदाज़ा मौला की गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। आप अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि ऐ खुदा, किस तरह मैंने नबी की यादगार को ज़मीन में दफन किया है, कैसी मेहरबान बासफ़ा पाक दामन फ़िदाकार जौजा को अपने हाथ से खोया है। खुदाया उसने मेरी हिफाजत के सिलसिले में कितने मसाइब बर्दाश्त किए, मेरे घर में कितनी जहमत उठाई। आह, जहरा के अंदरूनी दर्द, उनका शिकस्ता पहलू, उनके बाजू का वरम, उनके बच्चे की शहादत, अफसोस सद अफसोस मौत ने हमारे दरमियान जुदाई डाल दी। हज़रत जहरा की जुदाई ने मौलाए कायनात का दिल चाक चाक कर दिया था। इमाम ने बोझल दिल के साथ कब्र रसूल की तरफ रुख करके अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आपको मेरी जानिब से और अपनी दुख्तर अजीज़ की जानिब से जो आपकी खिदमत में पहुँचने ही वाली हैं सलाम हो। या रसूल अल्लाह, आपकी बरगजीदा बेटी की रहलत से मेरा सब्र ख़त्म हो गया, मेरी हिम्मत और तवानाई ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। जैसे मैंने आपकी रहलत के सदमे पर सब्र किया था, जहरा के फ़िराक में भी सब्र करूँगा। आपका जिस्म अथर मेरे दामन में था जब आपकी रूह ने परवाज़ की, मैंने ही आपकी आंखों को बंद किया, मैंने ही आपके जसद अथर को कब्र में उतारा, सब्र करूँगा। कुरान मजीद का हुक्म मेरे लिए काफ़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या रसूल अल्लाह, वो अमानत जो आपने मेरे सुपुर्द की थी, वो आपके पास लौट गई है। आपने अपनी जिस पारा जिगर को मेरे पास छोड़ा था, उसे मुझसे ले लिया गया, मेरे चमन का फूल तोड़ दिया गया। अब ज़मीन और आसमान मेरे लिए अंधेर हो चुके हैं, मेरे गम की कोई इंतहा नहीं, मेरी आंखों से नींद उड़ गई है, मेरा गम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ तक कि खुदा मुझे भी उस मकाम पर बुला ले जहाँ आप रहते हैं। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से जुदा हुए, और इस जुदाई की शिकायत मैं खुदा से करता हूँ। आपकी बेटी आपको आगाह करेंगी कि आपकी उम्मत ने आपकी दुख्तर के हुकूक गसब करने में एक दूसरे की मदद की। आप उनसे सवाल करें, वो आपको सारा हाल बताएंगी। उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द मौजूद है जो यहाँ जाहिर ना कर सकी, लेकिन आपसे बयान करेंगी। और अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला। या रसूल अल्लाह, अगर दुश्मनों का गलबा ना होता, मैं आपकी कब्र पे मुकीम हो जाता और इस मुसीबत उज़्मा पर उस माँ की तरह गिरिया उसारी करता जिसका बेटा मर गया हो। या रसूल अल्लाह, हमारे हालात ऐसे हो गए कि आपकी बेटी को मख्फी तौर पर रात की तारीकी में दफन किया गया। या रसूल अल्लाह, अपने दर्द को खुदा के सामने पेश करता हूँ, और आपकी ज़ात से ही सब्र का बेहतरीन दर्स लिया जा सकता है। आप पर और मेरी मेहरबान जौजा पर मेरा दुरूद हो। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ये लिखते हैं कि जब मौलाए कायनात हज़रत जहरा की कब्र पर तशरीफ़ ले जाते, सलाम करते, फिर आपको मुखातिब करके हाले दिल बयान करते, पहले हज़रत जहरा से कोई बात कहते और फिर उनकी तरफ से खुद ही अपने आप को जवाब देते, मौलाए कायनात फरमाते कि मैं क्यों अपने दोस्त की कब्र पे खड़ा उन्हें सलाम कर रहा हूँ, जबकि दोस्त की कब्र से जवाब सलाम नहीं आता। तुम कैसे दोस्तों के हमारे सलाम का जवाब तक नहीं देते? क्या दुनिया से जाने के बाद तुमने हमारी दोस्ती को भुला दिया है? क्या तुमने अली को भुला दिया है? फिर खुद ही फरमाते, मेरे दोस्त ने कहा, या अली, मैं कैसे आपको जवाब दूं कि आप नहीं जानते कि आपकी जहरा मिट्टी की चादर ओढ़े सो रही है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैकी व अला ज़ुर्रियतिकी या फातिमत ज़हरा يا بنت محمد أيتها البتول يا قرة عين الرسول يا بزعة النبي يا أم السبتين يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.